हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। विराज आदित्य पर गुस्से में पंच करने को आगे बढ़ा, लेकिन आदित्य समय पर हट गया। विराज का हाथ दीवार से टकराया और उसे बहुत तेज दर्द हुआ। वो कुछ देर तक दर्द से छटपटाता रहा, फिर दर्द सहते हुए उसने पीछे मुड़कर आदित्य की ओर देखा, जो हल्का मुस्कुरा रहा था। उसे मुस्कुराते देख विराज दांत पीसते हुए बोला, आदित्य सिंघानिया, बहुत बड़ा हीरो समझता है तू अपने आप को, लेकिन आज मैं सारी हीरोगिरी निकाल दूंगा तेरी, और सुनैना वो भी कभी तेरे पास वापस नहीं जाएगी। आदित्य ने भी गुस्से में घूरते हुए पूछा, वापस वो आते हैं जो छोड़कर जाते हैं, और मेरी सुनैना कभी मुझे छोड़कर नहीं गई। तुम धोखे से और जोर जबरदस्ती से उसे यहाँ लेकर आए हो, बताओ कहाँ है वो? आदित्य और विराज की लड़ाई देख सुनैना पहले ही घबराई हुई थी। आदित्य के शब्दों ने उसे और भी भावुक कर दिया। वो अपनी जगह से छिपकर नहीं रह पाई और तेज आवाज में चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ आदि। सुनैना की आवाज सुनकर आदित्य और विराज दोनों ने उसकी ओर देखा। अंधेरे में से आगे बढ़ती सुनैना आदित्य की ओर आई। वो भारी कदमों से चल रही थी। आदित्य सहन नहीं कर पाया और दौड़कर सुनैना को कसकर गले लगा लिया। सुनैना ने भी उसे कसकर पकड़ लिया और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। सुनैना पहले से ही भावुक थी। आदित्य के गले लगते ही वो रोने लगी। विराज उन दोनों को एक दूसरे के गले में लगे देख गुस्से में दांत पीस रहा था। वहां उसके कोई सुरक्षा गार्ड नहीं थे। उसने कुछ देर पहले ही उन्हें गुस्से में भगा दिया था। वो अकेला था और आदित्य को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। फिर गुस्से में इधर उधर देखते हुए उसे एक पत्थर दिखाई दिया। उसने चुपके से पत्थर उठाया और उन दोनों की ओर बढ़ा। सुनैना और आदित्य अलग हुए। आदित्य ने सुनैना के दोनों गालों पर हाथ रखकर उसके चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आदित्य ने अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछे और इशारे से उसे और रोने से मना किया। सुनैना ने हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन तभी उसकी नज़र पीछे से आते हुए विराज पर पड़ी। विराज आदित्य पर हमला करने ही वाला था, लेकिन सुनैना ने आदित्य को अपनी ओर खींच लिया और खुद उसकी जगह पर खड़ी हो गई। विराज इतना गुस्से में अंधा था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो आदित्य पर वार कर रहा है या सुनैना पर। उसने जोरदार हमला सुनैना के सिर पर कर दिया। ये करते ही विराज को एहसास हुआ कि उसने आदित्य की जगह सुनैना के सिर पर वार किया है। उसके हाथ से पत्थर टूटकर जमीन पर गिर गया। आदित्य को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने सुनैना के माथे से बहते हुए खून देखा। गुस्से में उसने विराज को जोरदार धक्का दिया। विराज पीछे की दीवार से टकराकर जमीन पर बैठ गया। वो बेहोश नहीं था, लेकिन अपराध बोध उसे उठने नहीं दे रहा था। विराज बेसुध सा दीवार से लगा जमीन पर गिरा पड़ा था और उन दोनों को देख रहा था। सुनैना की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कमजोरी से उसने हाथ उठाकर आदित्य के चेहरे पर रखना चाहा, लेकिन उसका हाथ वापस नीचे आ गया। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुनैना का नाम लेते हुए उसके गाल पर थपथपाया, नहीं 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 सोना, ये क्या किया तुमने? तुम पावल हो, दिमाग ठीक तो है ना तुम्हारा? नहीं, अपनी आंखें खोल कर रखो। तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं होगा सोना। आदित्य सुनैना का सिर अपनी गोद में रखे हुए उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। सुनैना के सिर से बहता खून उसके हाथ और शर्ट पर लग गया था। खून देखकर आदित्य का दिमाग खराब हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो सदमे में सुनैना को लेकर बैठा था और उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। सुनैना की पलकें बंद हो गईं। बेहोश होने से पहले उसने आदित्य का चेहरा देखा और हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही वो पूरी तरह बेहोश हो गई। आदित्य ने तेज आवाज में चिल्लाया, सोना! तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, सर आप ठीक तो है ना, और ये खून? आवाज सुनकर भी आदित्य ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी जगह से नहीं हिला। वो सुनैना की ओर देख रहा था। उसके आंसू सूख चुके थे। उसे लग रहा था जैसे ये सब उसकी वजह से हुआ है और वही सुनैना की इस हालत का जिम्मेदार है, क्योंकि विराज उस पर वार करने जा रहा था, सुनैना पर नहीं। ये आदित्य का असिस्टेंट नदीम था। आदित्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नदीम आगे आया और जो उसने देखा उसे देखकर तेज आवाज में चिल्लाया, ओ माई गॉड, अरविंद सर जल्दी यहाँ आइए, हमें अभी मैम को लेकर हॉस्पिटल जाना होगा। आदित्य सर चलिए आप भी हमारे साथ, बाकी सब हम देख लेंगे। उसकी आवाज सुनकर अरविंद, जो कॉरिडोर के आखिर में अपने कुछ सुरक्षा गार्ड्स के साथ था, दौड़ता हुआ नदीम के पास आया। आदित्य और सुनैना को देखकर उसने तुरंत ही प्रतिक्रिया दी। उसने नदीम के साथ मिलकर आदित्य को उठाया और कहा कि उन्हें सुनैना को अस्पताल ले जाना होगा। आदित्य चुपचाप उठकर खड़ा हो गया और सुनैना को अपनी गोद में उठा लिया। कुछ देर बाद वे एक बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी वैन में थे। कार में काले शीशे लगे हुए थे। नदीम गाड़ी चला रहा था। अरविंद भी आना चाहता था, लेकिन नदीम ने उसे वहां रुककर सब कुछ संभालने के लिए कहा। अरविंद मान गया। आदित्य ने सुनैना के हाथ के ब्रेसलेट में एक चिप लगाई थी जब वो उसके साथ रुकी हुई थी। उसे अंदाज़ा था कि विराज सुनैना तक पहुंचने और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, और आदित्य का डर सच हुआ। लेकिन इसकी वजह से उसने तुरंत सुनैना की लोकेशन ट्रेस कर ली, जबकि अरविंद अपनी पूरी टीम के साथ उसे नहीं ढूंढ पाया था। यहाँ आने से पहले आदित्य ने नदीम और अरविंद दोनों को लोकेशन भेज दी थी, इसलिए वे समय पर पहुंच पाए। लेकिन शायद वे थोड़ी देर से आए, और उससे पहले ही विराज की हरकत ने सुनैना को इस हालत में पहुंचा दिया। अरविंद ने विराज को अपने सुरक्षा गार्ड्स के साथ अपने अधीन ले लिया। उन्होंने पुलिस को सूचित कर दिया था। वहां कोई और सबूत नहीं था, क्योंकि वो खंडहर जैसी जगह थी जहां रिकॉर्डिंग संभव नहीं थी। विराज के साथ काम करने वालों को भी पकड़ लिया गया था। अरविंद लगभग 2 दर्जन प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड्स लेकर आया था। उन्होंने सभी को पकड़ लिया। विशेषकर विराज को लेकर अरविंद वहां से निकला। वो जगह सुनसान थी, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। विराज के हाथ पैर बंधे हुए थे और आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। जब वे विराज के हाथ पैर बांध रहे थे, तब विराज को होश आया। वो छटपटाने लगा, लेकिन अरविंद और उसके गार्ड्स ने उसे नहीं छोड़ा। कार में बैठा हुआ विराज का मोबाइल फोन बज गया। उसके हाथ बंधे थे, इसलिए अरविंद ने उसकी पैंट से मोबाइल निकाला। एक नंबर से कॉल आ रही थी, जिस पर पार्टनर लिखा था। अरविंद ने कॉल रिसीव नहीं की। उसने कॉल डिस्कनेक्ट होने का इंतजार किया और फिर एक मैसेज टाइप करके भेज दिया। बंधा हुआ विराज बेबस महसूस कर रहा था। अरविंद ने उसकी मुंह की पट्टी हटाते हुए पूछा, कौन है ये तेरा पार्टनर? अपनी जान की सलामती चाहते हो तो उसका नाम बता दो, नहीं तो सारा केस तुम पर बनेगा, किडनैपिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर का। तुम्हारी सारी जिंदगी खत्म बच्चे। अरविंद की बात सुनकर विराज सोच में पड़ गया। उसका गला सूख गया। वो कुछ नहीं बोला तो अरविंद ने दोबारा मुंह पर पट्टी बांध दी। आदित्य और उसके सुरक्षा गार्ड्स की कार जाने के बाद एक और लग्जरी कार वहां रुकी। दो लोग बाहर निकले। वे अनय और मनस्वी थे। अनय विराज के मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस कर रहा था, और मनस्वी ने अपने लोगों के पीछे लगा रखा था। उन्हें पता तो चल गया था, लेकिन शायद वे देर से आ गए थे। वहां सन्नाटा था। मनस्वी परेशान होकर बोली, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है हमसे? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अनय गुस्से में कार के बोनट पर मुक्का मारते हुए बोला, वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। जब लोकेशन यही थी तो यहाँ सन्नाटा कैसे है, जैसे सदियों से कोई नहीं आया। अनय सिर पकड़े खड़ा था, लेकिन मनस्वी इधर उधर देख रही थी। तभी उसे कुछ दिखाई दिया। नहीं नहीं, तुम ज्यादा बोल गए। ये देखो, ताज़ा जूतों और टायरों के निशान। ये मिट्टी में बने हैं, अभी कुछ देर पहले के लग रहे हैं। अनय कन्फ्यूज होकर पूछा, इसका मतलब? क्रमशः।